પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મુંબઈમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 90.
विग्रह गति में ध्यान होता है, प्रश्न है। विग्रह गति में उपयोग ही नहीं होता है, इसलिए ध्यान होने का सवाल नहीं है। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न में हम मुमुक्षु लोग को नहीं जाना चाहिए, प्रयोजनभूत विषय है। विग्रह गति मैंने एक आयु छोड़ करके दूसरा आयु का प्रारंभ हुए इसके बीच का जो समय होता है, एक समय, दो समय, अधिक से अधिक तीन समय, ये जो पीरियड है, ट्रांजिट पीरियड जिसको कहते हैं, बहुत कम समय है। उसमें उपयोग नहीं होता है तो ध्यान होने का सवाल नहीं। लेकिन इस प्रकार की जिज्ञासा में वर्तमान में हमारा कौन सा प्रयोजन है? जब कोई प्रयोजन ही नहीं तो ऐसे प्रश्न में उलझने से कोई फायदा नहीं। दूसरा प्रश्न भी इस परीक्षा में ऐसा ही है। ग्यारहवां गुणस्थान से गिरा हुआ जीव एकेंद्रिय क्यों होता है? इतना पुण्य होने से देवगति में क्यों नहीं जाता है? अब ये भी प्रयोजन मुमुक्षु, ये भी प्रश्न मुमुक्षु के लिए तो प्रयोजनभूत नहीं है, इसलिए ऐसे प्रश्न की चर्चा हम छोड़ दें, यही हमारे लिए अच्छा है। निज स्वरूप प्रति बहुत बहुत आकर्षण का जन्म हो, इसलिए विस्तार से निज स्वरूप का वर्णन कर कीजिए। इस विषय में कोई ग्रंथ पुस्तक का पुस्तक हो तो नाम बताइए जिसमें निज स्वरूप का वर्णन हो। निस्वरूप का आकर्षण का जन्म हो उसके लिए निस्वरूप के भेद प्रभेद को जानने की उतनी आवश्यकता नहीं है। जीव को, किसी भी जीव को आकर्षित होने का एक ही कारण होता है और वह कारण है अपना सुख। जहां सुख बुद्धि होती है वहां आकर्षण होता ही है। जहां सुख का निश्चय होता है वहां आकर्षण होता ही है, नहीं हो ऐसा नहीं बनता। इसलिए निज स्वरूप के प्रति आकर्षण तब होगा कि जब अपना सुख अपने में दिखेगा, तब मैं ही अनंत सुख का भंडार हूं, अनंत सुख का सागर मैं ही हूं, ऐसा जब विश्वास आएगा भाव भाषण से, तभी अपने स्वरूप का आकर्षण का जन्म होगा। इसके पहले इसका आकर्षण हो सकता नहीं है। इसलिए कोई ज्यादा स्वरूप के विषय में जाने या इस विषय ग्रंथ को पढ़े तो आकर्षण होए, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनती। अगर ऐसा होता तो तिरियंज को तो अपना स्वरूप का आकर्षण होता ही नहीं और अनुभव होता ही नहीं, क्योंकि उनको तो ग्रंथ पढ़ने का कोई अवसर ही नहीं है। तो इस विषय में ग्रंथ का सोचना है, लेकिन सही रास्ता ग्रहण करना चाहिए। बाल बच्चे अमन चमन होटल वगैरह से भी निज स्वरूप अच्छा लगे उसके लिए क्या उपदेश है? प्रश्न थोड़ा उत्पटांग है। ये तो अशुभ भाव है, जो भी बाल बच्चे अमन चमन होटल में जाने के परिणाम है वो अच्छा लगता है, तो ये तो अशुभ भाव में रस पड़ा है। उनके लिए तो स्वरूप का सोचना भी क्या है, उनको तो स्वरूप का विचार भी अच्छी तरह नहीं आने वाला है। स्वाध्याय रोजाना 4 घंटे करना चाहिए, साहित्य संगीत कला जिनुपासना वेद विज्ञान की वेद विज्ञान की गाथा। प्रश्न नहीं लिखा है, इतना शब्द लिख करके पर्चा छोड़ दिया है, जिसका हो प्रश्न बता देना। क्या प्रश्न है इसमें? प्रश्न नहीं लिखा है। तो संवेदन शक्ति कौन सी पर्याय में है और ये अपूर्व शक्ति किस प्रकार से सजीवन होती है? स्वसंवेदन शक्ति ये जीव का स्वभाव है, आत्मा एका स्वभाव से देखा जाए तो एकांत शुद्ध प्रत्यक्ष अनुभूति स्वरूप है, यानी स्वसंवेदनमयी शक्ति स्वरूप है। उसको प्रकाश शक्ति भी कहते हैं, समय सार में 12वीं गाथा में उसको प्रकाश शक्ति बोला है। वो तो कौन सी पर्याय में होती है? कि जीव के शुद्ध पर्याय में ये होती है, भेद विज्ञान पूर्वक होती है। ये अपूर्व शक्ति भेद विज्ञान से जागृत होती है। जिसकी भेद करने की शक्ति कुंठित हो गई हो उनको स्वसंवेदन का अनुभव नहीं होता है। यानी जो जीव पर प्रवेश भाव में रहता है, यानी मेरे में पर का प्रवेश हुआ या मैं पर में प्रवेश कर सकता हूँ करता हूँ, ऐसा व्याप्य व्यापकपणा अन्य पदार्थ में अन्य भाव में कल्पना से मिथ्या अध्यास से होता है जीव को, वहां तक उसकी स्वसंवेदन शक्ति जो है वो खुलती नहीं है, शुरू नहीं होती है। इसलिए जो वेद विज्ञान करता है उसी को ही भेद संवेदन शक्ति प्रकट होती है। यह विषय लिया है आचार्य महाराज ने समय सार की 97वीं गाथा में। कल के सुबह के स्वाध्याय में बहुत आया था भी मार्मिक विषय होने से, उसे फिर से समझाइए जब से तो उसका घूटन हो सके। भाव भाषण संबंधी संबंध विस्तार से, भाव भाषण के विषय में विस्तार से समझाइए और शक्य हो तो एक प्रवचन रखें कि जिससे निजाभ्यास शिविर के अनुरूप रहे। भाव भाषण के विषय में दोपहर की चर्चा में और कल के प्रवचन में तो पर्याप्त मात्रा में विषय आया ही है। तो भाव भाषण है वो अपने परिणामों के अनुभव के अवलोकन से आता है, इसके सिवा भाव भाषण आता नहीं है। सिर्फ विचार करने से या श्रवण करने से या शास्त्र का अध्ययन करने से भाव भाषण नहीं आता है। तत्वज्ञान के अभ्यास में इतनी सीमित प्रवृत्ति जिसकी रही है उनको भाव भाषण नहीं होता, लेकिन जिन भावों के विषय में वो अभ्यास कर रहे हैं वे भाव अपने परिणाम में मौजूद होते हैं, उनकी जांच तलाश अवलोकन नहीं होता है तो उसका भाव भाषण नहीं होता है, क्योंकि भाव भाषण एक अनुभवांश है जिसमें अनुभव ज्ञान होता है और ये अनुभव को समझे बिना भावों का अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता है। यही कारण है कि भाव भाषण होने के लिए अपने चलते हुए परिणाम पर उपयोग को ले जा करके हमें हमारे अनुभव को समझना आवश्यक होता है। यही भाव भाषण की प्रक्रिया है। स्वसत्ता के विषय में निर्विकल्प भाव भाषण का स्वरूप उपादेय भाव से प्रकाशन करने की विनती। स्वसत्ता के संबंध में निर्विकल्प भाव भाषण स्वरूप भाव भाषण का स्वरूप उपादेय भाव से प्रकाशन का मतलब यह है कि जो अपनी चैतन्य सत्ता है उसमें अपने अनंत अनंत गुणों का अनंत सामर्थ्य भरा हुआ है। जो विकल्प है ये तो वर्तमान राग की दशा में है, यानी वो पर्याय धर्म में जाता है, जबकि द्रव्य में अनंत गुण है उसमें कोई विकल्प का अवकाश नहीं है, क्योंकि वहां पर्याय नहीं है तो पर्याय का धर्म कहां से होगा। इसलिए मूल स्वरूप को निर्विकल्प है ऐसा बोलने में आता है, कहने में आता है। वास्तव में विकल्प निर्विकल्प दोनों अवस्था धर्म है। निर्विकल्प अवस्था स्वभाव सदृश होने से स्वभाव को भी निर्विकल्प स्वरूप निर्विकल्प सत्ता ऐसा कहने में आता है, तो कहने मात्र है। वास्तव में विकल्प निर्विकल्प की अपेक्षा स्वरूप को लागू नहीं होती है, इसलिए स्वरूप तो जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। अपना स्वरूप ऐसा होने से वो अपने को उपादेय होना चाहिए। अगर अपना स्वरूप अपने को उपादेय नहीं है तो ये ह्रेय हो जाएगा जो अनादि से हो ही रहा है, पर की उपादेयता बनी रही है। चूंकि पर की उपादेयता बनी रही है इसलिए अपना स्वरूप को उपादेय करने का उपदेश दिया जाता है, यही कारण है इसके पीछे। इसलिए अपने स्वरूप को जैसा है वैसा ज्ञान लक्षण के माध्यम से पिछाने, पिछानने से पिछानने पिछान के साथ साथ ही इसकी उपादेयता चालू हो जाएगी, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है जिसमें अनंत सुख भरा है, और अनंत सुख भरा है इसलिए सुख का आकर्षण तो हुए बिना रहेगा नहीं, उसकी उपादेयता आए बिना रहेगी नहीं। पर सत्ता संबंधी भाव भाषण विकल्प मात्र को मात्र का स्वरूप जो हेय स्वरूप है ये समझाने का विनती है। पर सत्ता के विषय में भाव भाषण विकल्प मात्र का स्वरूप यानी पर सत्ता है तो अपने को प्रयोजन का विषय नहीं है, इसलिए उसको गौण करना है, उसमें उसमें भाव भाषण के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गौण करना यही उसका ही पड़ा है तो उसमें भाव भाषण का तो कोई सवाल नहीं रहता है। तीसरा प्रश्न है व्यक्तिगत रूप में है जिसका उत्तर नहीं देने का हमारा शिष्ट है तो उसका उत्तर नहीं देंगे। स्वपर प्रकाशक ज्ञान में है और दर्शन में भी है, उस पर प्रकाश डाले। स्वपर प्रकाशक पना ज्ञान में भी है और दर्शन में भी है, क्योंकि वो चैतन्य के परिणाम है। एक चैतन्य सामान्य है, एक चैतन्य विशेष है। चैतन्य सामान्य को हम दर्शन उपयोग कहते हैं और चैतन्य विशेष को हम ज्ञानोपयोग कहते हैं। और चैतन्य स्वपर प्रकाशक होने से दोनों में स्वपर प्रकाशक पना है। यहाँ पर जिसको हम दर्शन कहते हैं, वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धा नहीं लेना। क्या दर्शन का अर्थ यहाँ श्रद्धा नहीं लेना? यहाँ तो दर्शन उपयोग अलग बात है, ज्ञानोपयोग अलग बात है, और श्रद्धा है वो अलग बात है। सम्यक दर्शन के पहले कौन जाति की निर्मलता होती है? सम्यक दर्शन के पहले अपने स्वरूप का भावभाषण हुए, ऐसी ज्ञान की निर्मलता होती है। वो बात तो इन दिनों में अच्छी तरह चली है। वो निर्मलता मोक्ष मार्ग वाली निर्मलता नहीं है, ये बात अवश्य है, किंतु हमारा ज्ञान प्रवर्तित हो रहा है, उस ज्ञान सामान्य में हमारा स्वभाव भी व्यक्त है, प्रकट है, साकार रूप है, अनुभव गोचर है, फिर भी हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज्ञान में मैलापन है, मलिनता है, निर्मलता नहीं है, यही कारण है। तो उतनी निर्मलता मोक्ष की भूमिका में आए, जिसको हम स्वरूप निश्चय कहते हैं, अस्तित्व ग्रहण कहते हैं, बीज ज्ञान कहते हैं, वो तो निर्मलता इस प्रकार की आती है कि जिसमें अपना स्वभाव का भावभाषण हो जाता है। ये इसकी जाति जो है, वो जाति एक ऐसी जाति है जो आगे जाकर के सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी निर्मलता की जाति समझना चाहिए। वीतराग दीवादि का निषेध कैसे होता है समझाइए। वीतराग दीवादि का निषेध कुदेवादिक की स्थापना से होता है या मान्यता से होता है, उसका निषेध आ जाता है। कुदेव को मानने में या रागी देव को मानने में या वितराग देव के रूप में कोई कृत्रिमता लाने से, राग युक्त कृत्रिमता लाने से वितरागता का निषेध हो जाता है। इस प्रकार से वितरागी देव का निषेध होता है। जैसे ये श्वेतांबर में बनता है तो भगवान तो वितराग है हमारे, फिर भी उस पर अलंकार श्रृंगार आदि करते हैं, तो वहां वितरागता का प्रदर्शन ही नहीं रहता है, राग का प्रदर्शन होता है, राग के निमित्त का प्रदर्शन हो जाता है। तो वहां हमारे जो भगवान है वो वितराग है ऐसा कोई मानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसमें सुदेव तत्व का निषेध आ जाता है, वितरागी देव का उसमें निषेध आ जाता है। यहाँ से लेकर के दूसरे संप्रदाय के जो भी रागी देव है उसकी स्थापना करना, करवाना, अनुमोदन करना, इसमें वितराग देव का निषेध है। एक बात, दोनों को मान ही नहीं सकते। दोनों को मानते हैं इसका मतलब वो एक रागी को ही मानते हैं, वितरागी को नहीं मानते, ऐसी बात है। और एक निषेध दूसरे प्रकार से आता है कि जो कुछ न कुछ छल पकड़ करके निषेध करते हैं स्थापना का, वो भी वितराग देवादि का निषेध है। कोई अहिंसा का छल पकड़ते हैं, कोई क्रियाकांड का छल पकड़ते हैं, उसमें वो वितराग देव का निषेध होता है, वो होना नहीं चाहिए। तीसरा, कुछ ऐसा बहाना लेता है कि ऐसा करेंगे तो हमारे समाज में वो हो जाएगा, ऐसी प्रणाली का हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। ऐसा करके वितरागी देव की स्थापना का जो निषेध करता है वो भी वितरागी देव का निषेध होता है, उसमें अनंत अर्यंतों का उसमें निषेध आ जाता है। समझ में लिया? उस पूजा का कोई फल नहीं है, उस पूजा का कोई फल नहीं है, और अभी तक ऐसा ही किया है। हमारे जीव ने भी, हमारा इतिहास अच्छा नहीं है, हम लोगों के भूतकाल का इतिहास अच्छा है क्या? अच्छा नहीं है। अनंत काल तो निगोद में बिताया हमने, त्रस्परिय का काल तो बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 2000 सागर है, इससे तो ज्यादा है भी नहीं। तो हर जीव जो त्रस्पर्याय में घूमता है फिर चला जाता है भटकता हुआ निगोद में, तो निगोद के लायक परिणाम किए तब तो गए, तो इतिहास तो किसी का अच्छा नहीं है। ऐसा ही किया है, नुकसान ही किया है, और क्या किया है। अब तो ये मौका आया है सब समझने का, हुआ सो हुआ, हुआ सो नहीं हुआ तो हो सकता नहीं है। सम्यक दर्शन हेतु अंतिम प्रेरक निमित्त क्या होता है? अंतिम माने क्या है और निमित्त माने क्या है? निमित्त तो देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष है, और सजीवन मूर्ति है वो उत्कृष्ट निमित्त है, बस उससे ज्यादा और तो निमित्त किसी भी निमित्त में सम्यक दर्शन के लायक होता ही नहीं है। इतने में ही होता है सर्वज्ञ देव, निर्ग्रंथ गुरु, सत्पुरुष और सत्शास्त्र। और सत्शास्त्र जो होता है वो पूर्व संस्कारी जीवों के लिए है, पर विश्वास किया जा सकता हो, विश्वसनीय व्यक्ति को आप्त कहने में आई है, और वो इस दिनों सजीवन मूर्ति है जिसके वचन विश्वास करने योग्य है, तीनों को ही आप्त कह सकते हैं। रूढ़ी के रूप में तो सर्वज्ञ को ही आप्त कहते हैं, लेकिन गुरु भी आप्त है, सत्पुरुष भी आप्त ही है, इनके वचन में विश्वास करने योग्य है अवश्य। सिद्धांत समझे बिना उपदेश परिणमता है क्या? सिद्धांत समझे बिना मतलब कोई ग्रंथ से सिद्धांत समझने का प्रश्न है क्या? नीचे लिखते हैं कि सिद्धांत समझने के लिए सर्वप्रथम द्रव्यानुयोग का आश्रय लेना वचनामृत कृपालु देव के समझने के लिए देव को समझने के लिए शास्त्र समझने का जरूरी है क्या? ठीक बात वो है कि सबसे पहले उपदेश परिणमन होने के लिए पात्रता चाहिए। क्या चाहिए? पात्रता चाहिए, और सर्वप्रथम उच्च कोटि की पात्रता कौन सी है? जो कृपालु देव के 105 नंबर के वचनामृत में दर्शन का इच्छुक, बस ऐसी पात्रता अगर आ गई तो उनको शास्त्र पढ़ने की कोई अटक या पाबंदी नहीं है। उसको द्रव्यानुयोग भी समझ में आ ही जाएगा। तो यम नियम संयम आपकी ओर उसने बात लिया तो नहीं लिया, पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सो ऊर्व से, अपने प्रभु के प्रति सत्पुरुष के प्रति परम प्रेम का प्रवाह जिसके परिणाम में उछला बढ़ा, उनके हृदय में सभी द्रव्यानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग सभी आगम के भेद माने रहस्य इसके हृदय में बसता है, निवास करता है। बात खत्म। इतना कर लो ने, ये कौन सी कठिनाई वाली बात है ये बताई फिर, इसमें कौन सी कठिनता पड़ती है, क्या आपत्ति है, कौन सी तकलीफ है, समझे तो सही। उतना जो सरल उपाय है पात्रता के विषय में, देखिए हर प्रकार के उच्च कोटि के पर्याय के प्राप्त करने के लिए नीचे वाली पर्याय की शर्त है होती है। जैसे कि हम ऊपर केवल ज्ञान से चले, तो जिसको केवल ज्ञान चाहिए उसको मुनिपना लिए बिना आए बिना केवल ज्ञान हो सकता नहीं, और जिसको मुनि दशा में आना हो उसको सम्यक दर्शन होना ही चाहिए, बिना सम्यक दर्शन कोई मुनि हो सकता नहीं, चाहे भी देह धारण कर ले। और सम्यक दर्शन के लिए स्वरूप का भाव वासन होना ही मनता है, बिना भाव वासन बीज ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन किसी को नहीं होता है, और भाव वासन के लिए भेद ज्ञान होना ही मनता है, बिना भेद ज्ञान भाव वासन होने वाला नहीं है, और भेद ज्ञान होने के लिए मोक्षार्थी होना चाहिए, बिना मोक्षार्थी भेद ज्ञान भी चलने वाला नहीं है। लेकिन मोक्षार्थी होने में कुछ पूर्व पर्याय की शर्त नहीं है। श्री भगवान तीर्थंकर देव के मार्ग की सुविधा है कि हमारे मोक्षार्थी होने में कोई भी जीव कितना भी पापी हो अगली सेकंड के तक हाँ प्राग अभाव हो जाएगा, पहले पर्याय का अभाव हो जाएगा, तो एकदम निर्धार कर ले कि हमें हमारा आत्म कल्याण करना ही है, आज से हम हमारा जीवन बदल देंगे, बस उनका जीवन बदला जाता है। वो तो केवल ज्ञान तक पहुंचेगा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कितनी सुविधा है इस मार्ग के, इतनी सुविधा तो संसार के कार्य में भी कहीं नहीं है। बताइए एक डॉक्टर बनना है तो कितने साल पढ़ना पड़ता है, अरे क्लार्क बनना है तो कितने साल पढ़ना पड़ता है, वो भी गारंटी नहीं पास होने की, यहाँ तो गारंटेड बात है। सही बात है, सही मार्ग तो बहुत सत्यम शिवम सुंदरम है। क्या जो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, वही इस मार्ग की बात है। फिर लगा देते हैं अपने मकान पे तो ये सत्यम शिवम सुंदरम है, ऐसा नहीं है। मूल में वो है, बार बात सत्य भी है, कल्याणकारक भी है और सुंदर भी है। दुखदायक मान्यताएं बदल दी जाए तो इसमें क्या दिक्कत है, है? हाँ उतनी बात समझनी है अवश्य कि दुखदायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर संसार में भटकते रहो, कौन नाक ना देते हैं, कौन रोकते हैं। इसलिए कृपालु देव ने तो सबसे सुगम से सुगम उपाय बताया है, पर यही सच्चा उपाय है। इसके बिना किसी को कुछ मिलेगा, शास्त्र पढ़ करके मार्ग मिल जाएगा, इस भ्रम में रहना नहीं चाहिए, ये भ्रम है।
ये जिसको ऐसा भाव होता है वो उपादान में होता है या निमित्त में होता है? भाव तो उपादान में होता है, इनको आप क्यों नहीं देखते हो? हाँ, जिसको ऐसा भाव आया, आपको शरीर में दर्द होता है, उस वक्त आपको डॉक्टर के पास जाने का विकल्प आता है कि नहीं आता है? इस वक्त निमित्ताधीन की दृष्टि की विचार विकल्प तर्क क्यों नहीं उठता है? मेरा तो एक प्रश्न यह है कि आपके 24 घंटे के जीवन में एक क्षण बता दीजिए कि आप निमित्ताधीन परिणमन नहीं कर रहे हो, ऐसे एक क्षण निकाल करके दे दीजिए हमें। पूरा 24 घंटा निमित्ताधीन परिणमन करते हो और अपना कल्याण के विषय में सत्पुरुष के चरण के ग्रहण करने की बात आती हो तो वहां तर्क उठता है कि निमित्त के पास हम क्यों जाए? वाह भाई वाह, ये कोई नियत है क्या कोई आत्म कल्याण करने वालों के? इसका नियत ही नहीं है, कैसे कल्याण होगा? पूरी कमी, एक कमी नहीं है, पात्रता ही वहां नहीं है, ऐसी बात है। लगता है कि स्वाध्याय नहीं होगा, प्रश्न चर्चा में ही हमारे समय निकल जाएगा, जबकि ये भी एक स्वाध्याय ही है। बार बार मान कषाय बनती है, दिखाने के बहुत भाव बनते हैं, ये भाव तो बहुत हानिकारक है, तो मान न बने उपाय बताइए। अच्छा, ये प्रकृतिगत होता है मनुष्य को, खास करके मनुष्य गति में ये होता है। तो मान अगर सरलता से यानी सुगमता से मिटाना हो तो चले जाना सदगुरु के चरण में, आत्म सिद्धि में लिया के नहीं लिया? हाँ, मानादिक शत्रु महान निज छंदे न मराय, जाता सदगुरु चरण मां अल्प प्रयास है जाए। इतना तो सुगम उपाय बताया है, और ये दिखाने के परिणाम है वो आडंबर के हैं। तो ऐसे आडंबर हम क्यों पसंद करते हैं? तो एक कल्पना के सिवा और कुछ है भी क्या? तो कुछ नहीं है, इसलिए इनकी क्षुद्रता समझ करके भी उनका मूल्य छूट जाता है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति और भाव नहीं होंगे। कृपालु देव के पत्र नंबर 27 पेज 165 को समझाए क्या बात है? पर पत्र लिख रहे हैं, आपकी पत्रिका पहुंची थी, विगत विदित हुई, प्रत्युत्तर में मुझे किसी भी प्रकार से बुरा नहीं लगा है, आपसे संबंध थे ना, वैराग्य के कारण से अपेक्षित स्पष्टीकरण नहीं लिख सकता हूं, यद्यपि अन्य किसी को तो पहुंच भी नहीं लिख सकता हूं, पत्र की पहुंच भी नहीं दे सकता हूं, फिर भी आप हमारे हृदय रूप हैं, इसलिए पहुंच इत्यादि लिख सकता हूं। मैं केवल हृदय त्यागी हूं, क्या हृदय त्यागी हूँ। हृदय त्यागी मैंने क्या, हार्ट नहीं है हमारे में, त्याग हो गया है। हार्ट नहीं है तो क्या है, हार्ट में क्या होता है, फीलिंग। जो सगे संबंधी के प्रति होते हैं वो हमारे में से तो चला गया है, क्योंकि हमको कोई अपना नहीं दिखता है। यही कहने का अभिप्राय है, अपने वाले के प्रति ये भाव रहता है, वो भाव हमारे में नहीं है, क्योंकि हमारा अपना वो पराया, अपना पराया वाला कोई हमारा परिणाम में भाष्यमान नहीं होता है। मैं केवल हृदय त्यागी हूँ, कुछ समय में, कुछ समय की अवधि में कुछ अद्भुत करने के लिए तत्पर हूँ। मेरे अंदर की शक्ति इतनी उछाला मारती है, इतनी उछाला मारती है कि कोई अद्भुत कार्य मेरे से होगा ऐसा मुझे लगता है। संसार से कंटाला हुआ हूँ, मुझे संसार में कोई रस नहीं है। मैं दूसरा महावीर हूँ ऐसा मुझे आत्मिक शक्ति के द्वारा जानने में आया हूँ। देखो सामान्य लोगों को तो बर्दाश्त करना नहीं हो सकता है, कैसी बात लिखते हैं। सामान्य प्राणी को तो ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन वो लगते हैं, लिखते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से लिखते हैं, अपने आत्मिक शक्ति को प्रतीति में लेकर के लिखते हैं कि मैं भी दूसरा महावीर हूँ ऐसा मुझे लगा है। मेरे ग्रह 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 मैंने ये सोम मंगल वगैरह आते हैं ना, सूर्य चंद्र वगैरह ज्योतिष के ग्रह, मेरे ग्रह 10 विद्वानों ने, मैंने 10 ज्योतिषियों ने मिलकर के परमेश्वर ग्रह ठहराया है। मैं नहीं कहता हूँ, ये ज्योतिष लोग कहते कि ये कोई परमात्मा होने वाला है, परमेश्वर होने वाला है, ऐसा 10 ज्योति ने बोला है। 10 ज्योतिषी इकट्ठा करके एक मत से ये बात निकाली है, क्या करूँ मैं, सत्य कहता हूँ। सर्वज्ञ समान स्थिति में हूँ मैं, मुझे क्या लगता है, ये पुरुषार्थ का जोर है, ये द्रव दृष्टि का बल आता है, ऐसी द्रव दृष्टि होती है। द्रव दृष्टि ऐसे नहीं देखती कि मैं सर्वज्ञ होऊंगा, ऐसा नहीं देखती, हूँ अभी हूँ और वैराग्य में झेलता हूँ, क्या कहीं भी मुझे रस नहीं आता। पढ़ना है क्या पूरा पत्र, तो लंबा थोड़ा है, तो थोड़ा बहुत जोरदार बात भी है उसमें, क्या करेंगे, पढ़ना है क्या। दुनिया मतभेद के बंधन से तत्व को नहीं पा सकी, सत्य सुख और सत्य आनंद वहां नहीं है। सत्य सुख और सत्य को स्थापन होने के लिए, एक सच्चा धर्म चलाने के लिए आत्मा ने झंपलाया है, हिंदी में क्या कहते हैं, जो खुद का मारता है, तैयार हुआ है, कम पड़ता है, कमर कसी है, ऐसा भी नहीं, हमने तो वो खुद का लगाया है, ऐसा बोल रहा है, हैं? हम कूदे हैं, हाँ? छलांग मारी है, ठीक। उसमें क्या है, गुजराती भाषा के इस शब्द में जो कोई भाव है वो इस प्रकार का है, आगे पीछे सोचे बिना कूद जाना, उसको कहता है कि झंपलाया है, झपटका मारना, हाँ हाँ, झंपलाना मैंने साहस करना, आगे पीछे सोचे बिना कोई जबरदस्त साहस करना हो तो कहे कि हम झंपलाते हैं इसमें, कोई हमें दरकार नहीं करेंगे किसी की। कैसा ऐसा हमारे आत्मा ने सच्चा धर्म चलाने के लिए ऐसा किया है, जंप लाया है। यह धर्म प्रवर्तेगा ही, मैं प्रवर्तेगा हूँ, भविष्य में प्रवर्तित करूंगा ही, ऐसा लिखते हैं। महावीर ने उसके समय में मेरा धर्म कितने के अंश में चलाया था, क्या क्या खुमारी है, देखिए खुमारी क्या है। महावीर ने उसके समय में मेरा धर्म कुछ अंश में चलाया था, अब ऐसे पुरुष के मार्ग का ग्रहण करके श्रेष्ठ धर्म का स्थापन मैं करूंगा। कुमारी कितनी है, मैं तो इससे भी आगे निकल जाऊंगा, तीर्थंकर से भी आगे। भावना को वस्तु के स्वरूप की मर्यादा नहीं होती। किसको ये बात समझ में नहीं आएगी, बहुत लोगों को, लेकिन बात ऐसी है कि कृपालु देव को इस वक्त जो भाव आ रहे हैं वो ऐसे हैं, उतनी भावना में वो आए हैं, धर्म प्रवर्तने के लिए उतनी भावना में आए हैं कि मैं तो इतना धर्म प्रवृत्ति करूंगा कि तीर्थंकर भी मेरे पीछे रह जाएंगे, इससे आगे मैं निकल जाऊंगा। भगवान महावीर भी मेरे के कुछ अंश में धर्म प्रवर्ताया मेरा धर्म, मैं तो इससे आगे प्रवर्ताने वाला हूँ। जैसे नया दुकानदार क्या सोचता है कि बंबई में मेरी दुकान जैसी एक भी दुकान नहीं होगी, ऐसी दुकान बनाऊंगा मेरी, ऐसा धंधा मेरा होगा कि मेरे आगे कोई जाएगा नहीं, तो ये एक भावना होती है। भावना कभी वस्तु स्थिति की मर्यादा को देखती नहीं है, हमेशा हमेशा ये वस्तु स्थिति की मर्यादा का उल्लंघन करके ही चलती है। यही सही भावना का स्वरूप है। क्या उसमें तोल नाप जोक करने वाला भावना में आ सकता नहीं है, ये पहली बात नहीं है। कृपाल देव के विषय में और भी बात है, वो लिखते हैं कि अभी कहलाने वाले जिनागम में, क्या कहलाने वाले जिनागम में लिखा है कि इस काल में मोक्ष नहीं होता है, 213 में लिखा। कह रहे भगवान अगर तुमने बोला हो तो भी ये कुछ मर्यादा में रख लो, कुछ क्षेत्र की मर्यादा में रख लो या कुछ काल की मर्यादा में रख लो, लेकिन ये मर्यादा हमें लागू नहीं होती, जाओ। मालूम है कि एक मर्यादा है वस्तु स्थिति की, लेकिन पुरुषार्थ का उछाला और मुक्त होने की भावना इस मर्यादा को तोड़ करके आगे जाती है। क्या इस मर्यादा को तोड़ करके आगे जाती है, यही भावना का स्वरूप रहता है। तो सिर्फ कृपालु देव का ऐसा हुआ ही नहीं, अनंत तीर्थंकरों ने भावना में तो ऐसा ही किया है। सभी तीर्थंकरों ने, हमारे सभी तीर्थंकरों ने ऐसी भावना भाई कि वहां वस्तु स्थिति की मर्यादा को ग्रहण कर दिया। जैसे कि उन्होंने क्या भाई भावना में भाया कि सारे जगत के जीव को मैं धर्म की प्राप्ति करा दू, सुख की प्राप्ति करा दू, सर्व जीव करो शासन रसी। क्या हो सकता है, क्या अनंत तो अभव्य है और इससे ज्यादा तो भव्य है, और इससे ज्यादा जो भव्य है वो भी चालू ही रहने वाले संसार में। बहुत कम लोग इस धर्म में धर्म प्राप्ति करके मोक्ष में जाते हैं, फिर भी भावना उसको नहीं देखती है, भावना में वो बात नहीं देखी जाती। वो तो जगत के एक भी जीव को और भव्य को भी बाध करके भावना में नहीं आते। क्या सिद्धांत नहीं टूटता है, देवेंद्र कुमार जी सिद्धांत नहीं टूटता है, हरगिज नहीं टूटता है, ऐसी बात है। तो बात समझने में कठिन पड़ेगी गिनती वालों को, लेकिन ऐसा ही होता है। महापुरुषों के भावना महान, ऐसी ही महान होती है। कितनी महान होती है कि बेहद महान होती है, उसको हद होती नहीं, इसी के नाम मानता है। तो ऐसा होता है, समझ लेना जितना समझ में आए उतना। अभी यहाँ इस धर्म के शिष्य को बनाए हैं, कुछ शिष्य को भी हमने बनाए हैं, और इस धर्म की सभा स्थापन भी कर ली है। 700 महानीति के वचन फिलहाल इस धर्म के शिष्यों के लिए एक दिन में तैयार करी की है। कितने? एक दिन में 700 वचनामृत लिखे हैं महानीति के, सबों के लिए, मुनियों के लिए, त्यागी के लिए, गृहस्थी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबों के लिए। 700 लिखे एक दिन में, कितना क्षोभ होगा? हाँ, कितना क्षोभ होगा? 20 साल की उम्र में लिखा है, उतना क्षोभ था कि सर्वज्ञ की प्रतीति आ जाए, कि सर्वज्ञ होते हैं जैन दर्शन में, ऐसी बात है। बहुत सी बातें लिखे, पूरी सृष्टि में पर्यटन करके यह धर्म का प्रचार करूंगा, पूरे जगत में पर्यटन करूंगा, देश प्रदेश में जाऊंगा, ऐसा लिखते हैं। 20 साल की उम्र में बहुत उछाल आया है। आप मेरे हृदय रूप हो और जानने के लिए उत्कंठित हो, जिज्ञासु हो, इसलिए अद्भुत बात आपको दर्शाई है। आप अन्य को मत दर्शाना, ये बात अभी गुप्त रखना, बाहर फैलाने के लिए नहीं है, ये भावना का विषय था। आपके ग्रह मुझे लौटते डाक से भेज देना। वो भी खुद थोड़ा जान लिया था ज्योतिष के बारे में, थोड़ी चर्चा कर ली तो उनको वो समझ में आ गई कि उसमें क्या टेक्निक है समझने की। तो मुझे कि आपके ग्रह मुझे भेज देना, मैं लिख दूंगा कि आपके नसीब में क्या है, आगे आके पीछे क्या होने वाला है। मुझे आशा है कि धर्म प्रवर्तन में आप मुझे बहुत सहायक होंगे और मेरे महान शिष्यों में आप अग्रेसर होंगे। आपकी शक्ति अद्भुत होने से ऐसा विचार लिखने का मुझे हिचकिचाहट नहीं हुआ। फिलहाल जो शिष्य किए हैं उनके संसार को त्यागने के कहेंगे कि तुम छोड़ दो अपने संसार को, अपने परिवार को, बीवी बच्चों को, वो बहुत आनंद से खुशी से उसका त्याग कर देंगे। इतने ऐसे शिष्य ढूंढे हैं, हम कहेंगे छोड़ दो परिवार को तो छोड़ देंगे। फिलहाल तो उन लोगों की ना नहीं है छोड़ने के लिए, ना तो हमारी है, क्या वो तो छोड़ने को तैयार है, लेकिन हमारी ना है कि आपको अभी छोड़ना नहीं है। कैसे लोग मिले होंगे? फिलहाल तो 100-200 शिष्य चारों ओर से तैयार रखना कि जिसकी शक्ति अद्भुत हो, ऐसे 200-200 तो तैयार रखना है, प्लानिंग कर रहे हैं अभी। 20 साल की उम्र में ये धर्म प्रवर्तने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। धर्म के सिद्धांत दृढ़ करके, मैं संसार का त्याग करके उन लोगों को भी त्याग कराऊंगा, मैं त्याग करके उन लोगों को त्याग कराऊंगा। कदापि यह पराक्रम के खातिर अल्प समय नहीं त्यागा तो भी उन लोगों को त्याग दूंगा। सर्व प्रकार से मैं सर्वज्ञ समान फिर वर्तमान में ही हो चुका हूँ ऐसा कहूँ तो चलता है, नहीं चलेगा ऐसी बात नहीं है। बहुत खुमारी आई है, देखो तो सही, सृष्टि को कैसे रूप में हम रख देते हैं, जगत को कैसे रूप में रखते हैं, पत्र में ज्यादा क्या लिखा जाए, रूबरू में लाखों विचार दर्शाने का भाव आता है, बहुत उछाला आता है, कितना लाखों विचार, सब सही ही होगा, मेरा प्रिय महाशय ऐसा ही मानना कि सब सही ही होगा, किंचित भय रखने की जरूरत नहीं है। आनंदित होकर के लौटते डाक से उत्तर लिखना, बात को सागर रूप होकर के रक्षा देना, जैसे सागर में कोई चीज गिर जाती है पता नहीं लगता, इतना गंभीर होता है, पृष्ठ में भी डूब जाती हो तो फिर खोदने से मिलती नहीं है, ऐसे इस बात को सागर रूप होकर के भीतर में रखना, बाहर में खोलना नहीं, दिखावा करना नहीं। तो ये देश वक्त उनको भीतर में जो जो भावनाएं आई थी खुद के विषय में और सद्धर्म के प्रवर्तन कराने के विषय में जो भी भावनाएं आई थी, उस भावना को उन्होंने अपने बहनोई के जीजाजी के पत्र में व्यक्त की है। समय तो हो चुका है, काफी पर्चे मेरे पास बैलेंस रह गए हैं, तो कल के स्वाध्याय मिलेंगे।
लव्या सबीर जो जोतामा शादी पूरा थाय काले